रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। भगवान ने अंगद को भेजा, क्यों भेजा? सत्संग करने के लिए भेजा। हनुमान जी को भेजा, रावण को क्यों भेजा? सत्संग करने के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज की सत्संग से रावण विभीषण शरणागत हो गया और अंगद के जाने से रावण के मन में चरणों में गिरने की आदत आ गई। भगवान के दो ही दूत गए थे, विभीषण को तो भगवान ने हनुमान जी ने सत्संग के द्वारा शरणागति सिखा दी, क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। परंतु अंगद जी ने रावण के मन में प्रेम नहीं था, लेकिन पैरों में पड़ना सिखा दिया कि ऐसे पैरों में पड़ा जाता है। अब वो नहीं माने तो नहीं माने, अंगद खूब समझा रहा है। अंगद ने कहा कि भाई सहस्रार्जुन ने तुमको पाताल में ले जा करके, सहस्रार्जुन ने अपनी नगरी में ले जा करके तुमको बांधे रखा था, एक सामान्य घुड़साल में ले जाकर खड़ा किया था। ये रावण आया है घुड़साल में, घोड़ों के साथ बांध दो, पशुशाला में तुम्हें रखा था। फिर पुलस्त्य ऋषि को ये पता चला कि मेरा पोता सहस्रार्जुन के यहां पशुशाला में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने आकर के सहस्रार्जुन को कहा कि भाई छोड़ दो, तो छोड़ दिया। और एक तो बाली की कांख में रहा, इसमें कौन सा रावण है तू? मैंने तो कई रावण के कई बात सुनी है। तो ये सब बातें सुनकर के रावण अंदर से तो घबरा गया कि ये रावण तो मैं ही हूं। राजा बलि के यहां भी मुझे पीट पीट करके बांध करके रखा था, वो भी मैं हूं। सहस्रार्जुन के यहां पशुशाला में रहने वाला भी मैं हूं, और बाली की कांख में रहने वाला भी मैं ही हूं। अब अपनी जैप को मिटाने के लिए वो कहने लगा, ए मूर्ख, तुझे पता ही नहीं है, रावण के बल का पता नहीं है। हर गिर जान जासु भुज लीला, ये कैलाश पर्वत है, ये मेरे भुजाओं की लीला को जानता है। मेरी भुजाओं में कितना बल है। क्या तू सहस्रार्जुन की बाली की बात करता है, कैलाश पर्वत की बात कर। कैलाश पर्वत पर विराजमान शंकर जी से जाकर मेरी बात पूछ, क्या बाली सहस्रार्जुन, शंकर जी के सामने कौन बल वाले है। वे मेरी सूरवीरता जानते हैं भगवान शंकर, क्योंकि उनके सामने मैंने अपने सिरों को फूल बना बना करके अर्पित किया है। एक बार नहीं, अमित बार मैंने शंकर भगवान की पूजा की है। मूर्ख, तुम्हारे भाग्य में शंकर के दर्शन लिखे ही कहां है। शंकर भगवान तक तुम नहीं जा सकते तो दिक्पालों के पास जाओ, दिक्पालों से पूछो। ये जितने जितने दिग्गज हैं, हमारे चार हाथी बड़े बड़े, उन हाथियों से जाकर मैं जबरदस्ती लड़ता था, ए दिग्गज आओ लड़ो मेरे से। जब जब भिड़ऊ जाए बरियाई, बरियाई माने जबरदस्ती आकर के मैं उनसे लड़ता था, तब वे दिग्गज बड़ी मुश्किल से मेरे सामने आते और यूं दांत यूं लगाते, तो मेरे तो यहां कोई दांत का चिन्ह ही नहीं हुआ। और उनके दांत थे वो गाजर मूली की तरह से उखड़ उखड़ करके गिर गए। क्या छोटे मोटे आदमियों की चर्चा करते हो, बाली की चर्चा करता है, सहस्रार्जुन की चर्चा करता है, ये तो पृथ्वी के राजा है ना। मैं दिग्गजों की बात करता हूं, मैं शंकर जी की बात करता हूं, मैं कैलाश पर्वत की बात करता हूं, दिक्पालों की बात करता हूं, तुम छोटे एक देश के राजा की बात करते हो। मेरे चलने से ये पृथ्वी ऐसी डोलती है जैसे किसी नौका पर हाथी चला जाए तो नौका की क्या दशा होती है। अरे मूर्ख, ऐसे रावण के लिए तो कुछ सुना ही नहीं क्या, केवल यहां मिथ्या प्रलाप करता है। ऐसे रावण को तू छोटा रावण कहता है, और एक वो मनुष्य के रूप में राम उसकी इतनी बड़ाई करता है, तो बहुत मिथ्यावादी है, निकृष्ट है, खल है, तेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अंगद जी मुस्कुराए, फिर क्रोध भी आया। अंगद ने कहा, ए संभाल करके बोलना, तुम अधम हो, अभिमानी हो, तेरी सभा में तुझे मैं फटकार रहा हूं। तू राम के लिए क्या है, राम समझता नहीं है, तू जानता नहीं है राम को। सहस्रार्जुन की बात करता हूं, तुमको सहस्रार्जुन ने पशुशाला में रखा था, और वे सहस्रार्जुन परशुराम जी के सामने हारे गए थे। परशुराम जी ने फरसे से उसके ये भुजा उपाड़ दी, भुजाएं काट दी उन्होंने। परशुराम जी महाराज ने सहस्रबाहु के भुजा रूपी अपार जंगल के अंदर अपने फरसे को लेकर अग्नि का काम किया। जैसे अग्नि सारे जंगल को जला डालती है, ऐसे परशुराम जी महाराज ने सहस्रबाहु के सब जो है भुजाओं को नष्ट कर दिया था। जिन परशुराम जी महाराज के फरसे रूपी सागर के अंदर अनगणित राजा डूब गए थे, सब राजा उनके सामने हारे थे, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुवारा 21 बार तक, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था, वे परशुराम जी महाराज उस सभा के अंदर राम जी के सामने हाथ जोड़ने लग गए थे, कान पकड़ने लग गए थे। तासु गर्व जेहि देखत भागा, उन परशुराम जी महाराज का गर्व राम जी के दर्शन से ही दूर हो गया। उन राम जी को तुम केवल हे दशग्रीव मनुष्य बोलता है। देख, कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी होती है, पर वो छोटी नहीं होती। राम मनुज कसरे सठ बंगा, बंगा बोलते मूर्ख, वो तो बांगो है, बांगो माने मूर्ख। अरे ओ मूर्ख दुष्ट, राम कोई मनुष्य है, कामदेव कोई धनुर्धारी है, गंगा केवल नदी है, कामधेनु केवल पशु है, अरे गौ माता है, गौ माता, गाय को केवल पशु मत मानो, गंगा को केवल नदी मत मानो, वो भगवान का चरणोदक है, कल्प वृक्ष को केवल वृक्ष मत मानो, अन्न दान को केवल दान मत मानो, अन्न साक्षात भगवान का रूप होता है, और अमृत होता है केवल रस ही होता है, अमृत अमृत होता है, गरुड़ केवल पक्षी होता है, गरुड़ भगवान का वाहन है, और शेषनाग केवल सर्प है, वो भगवान का आसन है, वो साक्षात प्रकृति का रूप है, चिंतामणि है वो केवल एक पत्थर मात्र है, वो संकल्प पूर्ति का साधन होता है, और वैकुंठ कोई लोक है, वैकुंठ को आप लोक मानते हो, वैकुंठ लोक नहीं, वैकुंठ तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, और भगवान की अकुंठित भक्ति को केवल लाभ मानते, लाभ हो गया, भगवान की भक्ति होगी तो लाभ हो गया, नाम जप किया तो लाभ हो गया, ये लाभ होता है, ये लाभ नहीं होता, ये तो खास अपनी चीज है, अपनी चीज है। हनुमान को केवल तुम बंदर मानते हो, देखो अंगद जी ने भगवान के लिए भी आदि चौपाई कही है, राम मनुज रे कस सठ बंगा, राम मनुज कस रे सठ बंगा, एक चुप आदि चौपाई, सबके लिए आदि आदि चौपाई आदि चौपाई, लेकिन हनुमान जी के लिए पूरा दोहा, सेन सहित तव मानम थे बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुतमारी, सेना सहित तुम्हारी तुम्हारा मान मर्दन किया था, सेना को खत्म कर दिया उसने। वाल्मीकि रामायण में आया, हनुमान जी महाराज ने कहा सुग्रीव से कि महाराज राम जी भी खड़े थे पर राम जी की तरफ नहीं, अपनी बड़ाई अपने से बड़ों के सामने कैसे करें। सुग्रीव के सामने कहा महाराज उनके आधी से ज्यादा सेना तो मैंने उसी में खत्म कर दिया, लाए में खत्म कर दिया, उनका जो अश्लाभ था सामान था बारूद वगैरह वो सब मैंने खत्म कर दिया, बारूदों के भंडारों में मैंने आग लगाई। कि तुमको क्या पता चला हनुमान की यहाँ बारूद है या ये, कि मैं सीता जी की खोज के लिए एक एक महल में तहखानों में और जो है गुप्त से गुप्त घरों में गया हूँ, यहाँ तक कि जहाँ बड़े बड़े कड़ाह चढ़ते थे जिनमें मांस पकता था उन कड़ाहों के अंदर मैं जाकर के सीता जी को, उल्टे पड़े हुए कड़ाह थे, बड़े बड़े भगोने थे जिनमें मदिराएं पड़ी थी, उनके बाद दुर्गंध तो आती थी, उन खाली हुए के नीचे जा करके मैंने देखा कहाँ सीता है कहाँ सीता है। तो मुझे इसमें खूब सा बारूद दिखाई दिया, सेनाओं का पड़ाव दिखाई दिया, भुसुंडियां दिखाई दी, भुसुंडी माने ये बंदूक, बंदूकों का भंडार था, और भी शस्त्रागार थे, सबको मैंने जला दिया। तो ये अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तेरी सेना सहित तेरा जिसने मान मर्दन कर दिया, तुम सब लंकावासी खड़े रहे, उसने एक ने तुम्हारे लंका को जला दिया, एक घर जलाए तो कोई बात नहीं, घर जलावे भाग गया, लंका को यूं जला दिया उसने, सबके देखते देखते तेरे बेटे को मार दिया, और यहां से ताल ठोक करके तुम्हारे सामने गर्जना करके निर्भय होकर के जो गया है उसको केवल तू बंदर मानता है। इसलिए इतनी बातों से जो समझ सकता है रावण, ज्यादा चतुराई मत लगाओ, चतुराई लगाना हो तो भगवान के भजन में लगाओ। बहुत बढ़िया बात बोले, बहुत अच्छी बात। तुमको यदि चतुराई लगानी है तो कैसे इस संसार से पिंड छुड़ाएं, किस होशियारी से संसार से अलग हो और कैसे भगवान में प्रेम हो, वहां तुम अपनी चतुराई लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राम के साथ द्रोह करता है रे। अरे राम जी के साथ द्रोह रखेगा तो न तुझे ब्रह्मा जी आश्रय देंगे, न तुझे रुद्र देंगे, कोई तुझे शरण आश्रय देने वाला नहीं है। यहां लंका में और चारों तरफ से सुरक्षित स्थान पर बैठ करके बिचारे इन भोले भाले राक्षसों के ऊपर तू अपनी हकूमत लगाकर गाल बजा रहा है, तो बाहर आके बोल देखे ऐसा, राम जी के बैर से तुम्हारा क्या हाल होगा इसका तुम सोचो। बंदर चारों तरफ तुम्हारी लंका में छा चुके हैं और बंदर तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को लाओ तो सही कि जिसके दस दस माथे हैं, एक एक माथे की गेंद बना बना करके हम उसके लात मार मार करके खेल खेलेंगे, हमारे पास गेंद नहीं है। तब सिर निकर कपिन के आगे, और वे छोटे छोटे बंदर अपने बाप भगवान के पास ही जाएंगे और कहेंगे हे भगवान हमको खेलने के लिए गेंद दे हो। तो उनकी बातों को सुनकर के वे एक बाण मारेंगे, लो इतने बंदर लो तुम गेंद ले हो, तुम गेंद ले हो, तुम गेंद ले हो। चारों तरफ बंदर खड़े रहेंगे और तुम्हारा सिर राम जी की बाण से उतरेगा और बंदरों के लिए गेंद बनेगा। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेलिए भालू किस चौगाना, शर्म आनी चाहिए तेरे ही लंका के चौगान में खड़े होकर तेरे गेंद के तेरे सिर को गेंद बनाकर खेलेंगे। क्या तेरे में इतनी चतुराई नहीं है कि उस दिन से तू बच जाए? तू क्या राम जी के कोप से बच सकता है? उस समय जो आज तू इतनी बड़ाई कर रहा है, गाल बजा रहा है, ये उस समय तेरा कुछ नहीं चलेगा। इसलिए अब ये अंतिम चेतावनी है कि अस विचारी भजु राम उदारा, उदार भगवान का भजन करो। विभीषण को राजगद्दी दे दीजिए, तुम्हारे हाथ में लंका है नहीं। तुम यही सोचोगे ना कि राम तो एक राज्य से निष्कासित है और वो मैं एक राजा हूं, मेरे से क्यों युद्ध करेगा, कैसे युद्ध कर सकता है? अरे उन्होंने राजा पहले लंका का दूसरा घोषित कर दिया है, बना दिया है, निर्मित है, वो तुमसे युद्ध कर सकता है। रावण कहने लगा ए बंदर, मेरे से युद्ध करने से पहले मेरी सीमा तो देख। कुंभकर्ण मेरा भाई मेरे से पहले रहेगा। तुमने कुंभकर्ण का नाम नहीं सुना? इंद्र को जाके पूछ लेना। इंद्र उसके सामने बड़ा घबराता है, मोर पराक्रम नहीं सुने ही, और मेरा पराक्रम तुमने नहीं सुना? हे मूर्ख, तुम्हारे जैसे मूर्ख बंदरों को इकट्ठा करके राम कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं हो गया? तुम यहां बार बार मुझे सुनाते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बांध लिया। क्यों बांधा? केवल लंका में प्रवेश करने के लिए ना? हमारी लंका में एक भी ऐसा राक्षस नहीं है कि जो इस समुद्र को देख करके यहीं रह जाता हो, जो पुल के पार न जा सकता हो, आराम से पुल को पार, ये समुद्र को पार न जाए, आराम से जाते हैं आते हैं, सब राक्षस सब जगह घूमते हैं। विशेषता तो इस बात की है मूर्ख कि समुद्र को यूं ही कदम की तरह लांग जाए। तुमको यहां पर एक सेतु बनाना पड़ा, समुद्र के सामने हाथ जोड़ने पड़े और जगह जगह से तुमको पत्थर ला करके और पुल बनाना पड़ा, और उसके बाद तुम राजी होते हो कि हमने समुद्र पर पुल बना लिया। दिखाया तुम्हारी बुद्धि का यह खजाना हमको। और दूसरी बात तुम यह कहते हो कि दूसरी बात हम ये कहते हैं हमारी भुजारूपी सागर के ऊपर पुल बनाओ तो पता चले इस समुद्र के ऊपर बना, मेरी भुजारूपी मेरी भुजा का जो बल है इसके ऊपर तुम चल करके बताओ कितने कितने राजा लोग मर गए मेरे भुजा के सामने। तुमने एक समुद्र के ऊपर पुल बनाया है मूर्ख, मेरे 20 भुजा है, 20 भुजा अपार है, इनको कोई पार पा जाए तो देखें। ये दिक्पाल तो मेरे सामने पानी भरते हैं, इनको कहता हूं आज मेरे परिंडे में पानी भरना है, तो हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़े रहते हैं। तुमने इनकी महिमा गाई है, ओ हो, तुम्हारे यदि इतने ही ये महाराज राम तुम्हारे इतने ही बलवान है, तो फिर तुमको यहां दूत बना करके संधि के लिए कैसे भेजा है कि तुम लड़ाई मत करो, सीता को ले जा करके दे दो। रिपुसन करे रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, एक तरफ मुझे शत्रु मानते हो, दूसरी तरफ मेरे से बात करने के लिए दूत भेजा है, तुमको शर्म नहीं आई? नहीं शर्म आई है तो देव मेरे से बात करो ना, तो सीधे बात मत करो, मेरी भुजा का बल देख करके फिर बोलो, इनसे डरो, इनसे हर गिरी मथन निरखी मंबाऊ पुनिसट किमी निज प्रभु ही सराव, पहले इन भुजाओं को देखो और मेरा प्रताप यहां सुनो, उसके बाद मेरे से बात करो, नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। फिर रावण के समान ऐसा कौन सुरवीर हुआ है जो शंकर के सामने अपने कितनी बार सिर काट काट करके उनके अर्पित किया है। मैं झूठ बोल सकता हूं तो जाओ शंकर जी से पूछ के आओ कैलाश पर्वत पर, शंकर जी झूठ बोलेंगे नहीं, एक बार नहीं कोटि करोड़ों बार मैंने सिर काट काट के रखा है, करोड़ों बार। और एक मूर्ख, जब भी मेरा सिर कटता था, सिर कटने में उसमें एक विधाता का लेख लिखा हुआ आता था, ए रावण तेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से लिखी हुई है। अरे विधाता, बुढ़ा हो गया, साठी बुद्धि नाठी, तुमको लिखना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, बताना ही नहीं आता, रावण की मृत्यु मनुष्य से होगी, जिस सिर के वो काटा उसी सिर में ये लिखा हुआ, मैंने उसको आग में फेंक दिया, मेरे मन में कोई त्रास नहीं है। आनवीर जल आनवीर बल सठम आगे, पुनि पुनि कैसे लाज पति त्यागे, मेरे सामने जो भी सिर ये बोलता था वो तुच्छ तुच्छ हो जाता था, मैं फेंक दिया उसको, जा विदाता चुनौती दी मैंने, तू मेरे मृत्यु को कभी लिख सकता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अंगद ने कहा अच्छा बड़े लाजवान हो आप, बड़े शर्मदार हो, शर्मसार हो, बड़ी आपको शर्म आती है, आप जैसा तो कोई लजवंत पुरुष मैंने देखा ही नहीं है, तुम्हारे जीवन में शर्म आनी तो स्वाभाविक बात है, अपने मुंह से तुम इतनी बड़ाई शर्मदार होते तो नहीं करते, तुम शर्म तुमको शर्म आती है। रावण तुम इतने ही यदि विलक्षण योद्धा होते तो कभी तो कभी हमको हमारे पिता बाली कुछ तो कहते ना कि एक रावण बहुत बल वाला लंका में रहता है, कभी उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया। तुम कितनी बार आकाश मार्ग से गए होंगे, अरे तुम सीता को ला रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, हमें पता ही नहीं था उस समय कि तू है, हमने एक साधारण जंतु समझा, क्यों उड़ते रहते हैं ऐसे जंतु, हमने परवाह की नहीं, यदि उस समय आज जैसी बात होती तो हम आकाश में जाकर के तुमको वहीं पकड़ करके बता देते कि सीता हरण कैसे होता है। सिर और शैल कथा चित रहे, बार बार तुम मुझे दो ही बात कहते हो, ये सिर काटा पर्वत उठाया, सिर काटा पर्वत उठाया, 20 बार तो कह दिया, पर हम कहते तुम्हारी ये भुजा उस समय कहां गई जब सहस्रार्जुन के यहां घुड़साल में तुम बंधे हुए थे, तुम्हारे उस समय भुजा का बल कहां गया, मेरे बाप के सामने कहां गया, और बलि राजा के समय तुम्हारी भुजा का बल, हाँ तुमने अपने हृदय में छिपा लिया, क्योंकि तुम लाज वाले हो ना, तुमने ला रहे मैं सहस्रार्जुन से कैसे लड़ू, मैं बाली से कैसे लड़ू, मैं तो शर्मदार हूं, इसलिए तुमने अपना बल छिपा लिया। मूर्ख कहीं के ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ किष्कंधा में कितने ही जादूगर आते हैं, कभी सिर कटावा दिखाते हैं, हाथ सिर पैर कटा फेंकते हैं सबके सामने, ये देखो हमने सिर फेंक दिया, यूं करके हाथ यूं देखो हमने हाथ फेंक दिया, देखो हमने ये पैर फेंक दिया। ये तो जादूगर बहुत किया करते हैं। इंद्र जाल कहूं कहीं नबीरा काटिए निज कर सकल शरीर, सब शरीर को काट काट के फेंक डालो आओ। और तुमने कहा कि मैंने मेरे सिर को काट कर अग्नि में फेंक दिया, तो जर ही पतंग मोह बस भार बह खर वृंद। ये पतंगे हैं, ये लाइटों के अंदर आगे चिड़चिड़े मर, कई लाखों पतंगे मरते हैं। तुमने तो सिर ही डाला, वो सारा शरीर डाल देते मोह के कारण से। और गधे सारे दिन जो है भार ढोते ही रहते हैं। तुम क्या मैंने भूजा हुए कैलाश पर्वत उठाया, साहब कैलाश पर्वत उठाया। गधे हैं जो भार ढोते ही रहते हैं, वो तो कोई सूर्य नहीं कहलाते। ज्यादा बकवास मत करो। तुमने कहा कि राम जी ने मुझे दूत बनाकर भेजा, बिल्कुल नहीं भेजा है। राम जी ने मुझे एक ही बात के लिए भेजा है। राम जी ने कहा है कि रावण को जाकर बोल देना कि मेरा अपमान न हो जाए, मेरा अपमान हो जाएगा। राम जी का अपमान कैसे, कि एक सिंह जैसे श्यालिये को मारता है ऐसे मुझे रावण को मारना पड़ेगा। रावण तू तो है श्यालिये के समान और राम जी हैं सिंह के समान। अब सिंह के भी श्याले को मारे तो क्या होता है भाई, क्या है सिंह है तो ये राम जी को बुरा लगता है। अरे मूर्ख तू इतनी इतनी बात बोल गया और मैं यहां जो है ये सुन रहा हूं केवल राम जी के कान से सुन रहा हूं, मैं तेरा अभी मैं भरी सभा में गड़ा पके मुंह के ऊपर जोर से मुक्का मारू और सभा में खड़ा होकर सबको ललकार दूं, खबरदार मेरे पास कोई आया तो, और तेरे देखते देखते सीता जी को ले जाकर राम जी के चरणों में रख सकता हूं। परंतु हे अधम, हे देव शत्रु, हमको राम जी ने ऐसे लाने की आज्ञा दी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, सीता हरण का उनको दंड मिलना चाहिए, तुम्हें दंड देने के लिए वो मृत्यु की बात है। हम तो तुम सीता तुम ला सकते हो सूना करके, हम तो तुम्हारे सामने सीता को ले जा सकते हैं, तुम्हारे सामने ले जा सकते हैं, परंतु नहीं, हम तुमको मार करके दुनिया को ये बताएंगे कि किसी स्त्री की चोरी का कितना बड़ा फल मिलता है। तू अपनी इतनी भुजाओं का बखान करता है तो राम और लक्ष्मण के रहते रहते तू सीता को क्यों नहीं ले आया। तू अपने आप को बहुत बड़ा गर्वीला मानता है। यदि मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो अभी यहां कई कोतक कर सकता हूं। ये तेरे पास जितने लोग बैठे हैं ना, ये मेरे एक एक मुक्के के शूरवीर है तेरे पास। हनुमान जी ने तो जला करके तहस नहस लंका की, मैं लात मार मार करके तुम्हारे महलों को ढांस करके सब तुम्हारा ये गांव चौपट करके और ललकार करके सीता जी को ले जा सकता हूं। पर क्या करूं, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने में क्या बड़ाई है। 14 आदमी मरे हुए होते हैं, 14 आदमी मरे हुए, इनको क्या मारूं। एक तो कौल, कौल का मतलब कुल परंपरा से जो ये वाम मार्गी हैं, वामपंथी हैं, जो इतने में ही समझ लेना, बहुत उनकी क्रियाएं बड़ी अशास्त्रीय तामसी क्रियाएं घृणित क्रियाएं होती हैं, ये कौल होते हैं। कुल परंपरा से इनका यही काम है, वाम मार्गी, बस इतना ही समझ लेना। एक जो जो काम के वशीभूत होता है, एक जो कंजूस होता है, एक जो महामूर्ख होता है, गिनते जाना, वाममार्गी, कामी और कंजूस, महामूर्ख, अत्यंत दरिद्र अपयश वाला जिसका खूब अपयश हो रहा हो, वो बूढ़ा रोगी निरंतर क्रोध करने वाला भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला शास्त्र और संतों का विरोधी शरीर का पोषक सबकी निंदा करने वाला पाप का खजाना पापी महान पापी, ये 14 तो वास्तव में जीते हुए शव है, जीता शव है। ये एक तो है मरा हुआ शव, ये जीवित शव है, जीवित शव सम 14 प्राणी। क्या करें अब, तेरे से बात करना भी हमारा कोई दुर्भाग्य था, आए हम बात करने के, तेरा मुंह देखने लायक नहीं है। रावण ने कहा, उसमें रावण यूं करने लगा, दांत भींचने लगा, देखने लगा, अरे मूर्ख तू छोटे मुंह बड़ी बात करके यहां सभा के अंदर मेरे द्वारा मरना चाहता है, तुझे मेरे बल प्रताप का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू महाप्रलापी हो गया है। तू बार बार अपने अपने राम की बड़ाई करता है, यदि राम इतना ही गुणवान होता तो उसको अयोध्या से देश निकाला क्यों दिया, और बाप ने दिया, मां ने दिया, और प्रजा उसको पहुंचाने के लिए बाहर तक गई उसके साथ साथ कि जाओ हम तुमको देश निकाला देते हैं। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, पिताजी ने बनवास दे दिया। वो बेचारा राम, उसकी कितनी दयनीय अवस्था है अंगद, पीछे से वो कितना खोखला हुआ है, न उसके पास राज्य है, न उसके पास प्रजा का बल है, और वो उसकी स्त्री में ले आया, वो रात दिन विरह के अंदर डूबा हुआ है, उसकी इतनी बड़ाई करने का कारण क्या है कि तुम्हारे पास अब बल नहीं रहा ना, तुम केवल शब्द जाल बनाकर मुझे भयभीत करके और जो है अपना बल छिपा करके तुम सीता को ले जाना चाहते हो, कि बल तो हमारे पास है नहीं, बड़ा भयभीत करो, कुछ डराओ, कुछ धमकाओ, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मूर्खो अब तुम्हारा काल आ गया, ये सब निशाचरों का भोजन हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, अपनी इतनी बड़ाई करते हो, तुम हमारा भोजन हो भोजन। इतना क्रोध आया अंगद को, अंगद ने कहा अरे राम के लिए इतनी बात कह दिया कि इसके कुलक्षणों से इसको देश निकाला दे दिया, अब इतना उसको क्रोध आया, यूं करके अंगद ने जोर से वहां पर जमीन पर यूं मुक्के की लगाई, मगर जमीन ही डोली, डोलने से रावण के भी सिंहासन पर बैठा हुआ था, हो 10 माथे उसके 10 मुकुट गिर गए, वहीं 10 मुकुट गिरे तो वहां पर अंगद जी ने क्या किया, 1, 2, 3 और 4 मुकुट भेज दिए। ये 4 ही मुकुट क्यों भेजे, पूरे ही भेज देते तो क्या करे, कुछ को तो क्या है, वो यूं उठा रहा था, वो यूं उठा उठा के वापिस रख रहा था, अंगद जी उठा के यूं फेंक रहे थे, तो 4 तो उसने ले लिया, वो 20 बुझाए वही उसकी इधर उधर ले लिया, 4 फेंक दिए राम जी की तरफ। तो उधर क्या हुआ कि राम जी की सेना में दिन के अंदर इतने चमकने वाले 4 आए जो है मुकुट, तो सब सेना आकाश से कोई तारा उल्कापात हो रहा है, और भगे इधर उधर भगे, राम जी की तरफ भगे। महाराज रावण करी करी कोप चलावा, रावण ने क्रोध करके ये देखो उल्कापात कर दिया, ये वज्रापात कर दिया, राम जी के पास चले गए, दुबुक दुबुक के बैठ गए राम जी के पास। क्या महाराज अब क्या हो गया, कह प्रभु हंसी, भगवान हंसने लगे, अरे कुछ नहीं, क्यों डरते हो, ये कोई वज्र नहीं है, ये कोई तारा नहीं है, ये कोई रावण का भेजा हुआ शस्त्र नहीं है, तो आज देखो देखो तुम चिंता मत करो, वो देखो हनुमान ला रहा है, हनुमान जी ने उनको पकड़ लिया, लपक के हनुमान जी जो आए ना, हनुमान जी ऊपर लपक के 1, 2, 3, 4 यूं लेकर के भगवान के पास आए। तरकी पवन सुत कर गए आनी धरे प्रभु पास, भगवान के पास में रखे हूं, भगवान करे अरे रे बंदरों डरो मत, ये तो रावण के मुकुट है, मुकुट ये रावण क्यों मुकुट है, ये कोई उल्कापात मत समझो। कौतुक देख बालू के भी बंदर क्या करे, पास में जावे और थोड़ा छू छू के देखे भगा, अच्छी तरह से देखो, देखना है तो डरते क्या हो। कौतुक देख ही भालू कपी दिनकर सरीस प्रकाश। हे महाराज ये ऐसे सूर्य क्या प्रकाश, माने सूर्य जैसा प्रकाश इनमें से निकल रहा है। उधर तो ये बात हो रही थी, इधर रावण जो है वो कहने लगा, रे इसने चार हमारे मुकुट फेंक दिए, सब सभा के देखते हुए आप लोग देख रहे हो, शर्म नहीं आती, आप जाओ इसको भी पकड़ लो और जितने बंदर है सबको खाओ, अभी अभी खाओ, इसको भी पता चले, इसको यहीं रहने दो, बाकी सब तुम जाओ, जल्दी जाओ खाओ भालू कपी, जय जय पावो, जहां तुमको जो भालू मिले बंदर मिले सबको खाओ। मैं तो मुकुटहीन हुआ हूं लेकिन ये लंका मरकटहीन होनी चाहिए। मरकटहीन करो मही जाए, मरकट माने बंदरों से रहित कर देना लंका, एक बंदर नहीं रहना चाहिए। और जाओ राम और लक्ष्मण को जाकर कैद खाने में डाल दो। जोर से हंसे अंगद, वाह वाह रावण वाह, निर्लज्जों की भाषा इतनी सीमा को पार करती है, आज पहली बार देखा। अरे मूर्ख तू अपने गले को काट करके अपने आप ही आत्महत्या करके मर क्यों नहीं जाता रे? ए स्त्री की चोरी, चोर करने वाले स्त्री चोर, कुमारगामी, महादुष्ट, पाप राशि, संन्यपात में जैसे आदमी बोलता है बिना सोचे समझे, ऐसे तू बोल रहा है, इसका फल तुझे आगे मिलेगा। राम जी को मनुष्य बोलते हुए तेरी शर्म नहीं आती, ऐसी इच्छा होती है लपक करके तेरी जीभ निकाल लूं, जीभ निकाल करके लंका में बता दूं कि राम के विरोध में बोलने वाले का क्या फल होता है। क्या करूं मैं, दबा हुआ हूं। तेरे 20 आंखें तो भी तुझे सूझता नहीं कि कौन क्या है। मैं तेरे दांत तोड़ने लायक हूं, बस भगवान ने मुझे आज्ञा नहीं, उन्होंने इतना ही कहा है, रिपुसन कर बतक ही सोई, केवल बात ही करना, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना। तू कहता है मरकटहीन कर दूं, तेरी ये लंका है ना ये गुलर के फल के समान है, जिनमें तुम सब लोग छोटे छोटे जंतु रहते हैं, उठा के खा जाऊं तुमको मैं, बस एक ही बात है, राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। अरे बाली पुत्र अंगद, बहुत बोल गए तुम, हम बाली से कई बार मिले, ऐसे बाली नहीं बोला करते थे, लबार हो करके, लबार माने केवल यूं वचनों का लबार, आहू आहू ऐसे नहीं बोलते थे तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता ही एक एक बात सोच समझ करके बोलते थे, तुम तो बहुत लबार हो गए हो। हाँ हो गए ना, तुम अभी छोटी उम्र के हो, तुम युवराज हो, तुम्हारे मन में राज्य की इच्छा है, तुम देखते हो कि बाली को मारा और राज्य मुझे नहीं मिला, सुग्रीव को मिला, अब मैं राम की थोड़ी चापलूसी करूंगा तो राम मुझे, आज तो युवराज और कल मुझे राजा बना देंगे, इसीलिए कर रहे हो। अरे मूर्ख ये बात तो तुम हमसे भी बात कर सकते थे, ये राज्य के लिए किष्किंधा राज्य के लिए तुम राम के पास गए, ये राज्य तुमको मैं भी दिला सकता था। बालिन कबहु गाल अस्मारा, मिली तपसिन ते भय से लबारा, उन तपस्या से मिलकर के इतनी बातें सीख गए तुम। अरे रावण मैं लबार, हाँ हाँ मैं बहुत बोल गया रावण, सही बोलते हो तुम, क्या बताऊं, मुझे इतनी बात बोलनी नहीं चाहिए थी, मुझे तो केवल तुम्हारे कोई शब्द निकले उन शब्दों के बोलते मुंह पर मुक्का मार करके तुम्हारे शब्द को वहीं रोक देना चाहिए था, मैं बहुत बोल गया, गलती हुई मेरे से। एक बात तुम्हें कहता हूं रावण, भीतर से भगवान की कृपा को याद किया, अपना पैर लिया, पैर यूं सभा में जोश रख, ये पैर रखा मैंने, जो मम चरण सकसी सट तारी, देख रावण जो ही तू ये मेरा पैर यहां से उठा लेगा त्यों ही सीता में हार गया। चलो, राम जी ने ये तो कहा नहीं था कि तुम ऐसी जाकर प्रतिज्ञा करना। राम जी ने कहा है कि रिपुसन करई बतक ही सोई। तुमने दाव लगा दिया, पूरी सेना का सेना पूरी एक तरफ युद्ध के लिए मोर्चा कर रही है, और तूने कह दिया कि मेरे पैर को तू ज्यों ही उखाड़ लेगा हम सीता हार जाएंगे। इतना बड़ा उद्योग भगवान का इतने जल्दी तूने मटियामेट कर दिया। कोई लंका में नहीं, कोई राम जी की सेना में अंगद से पूछे तो अंगद के पास क्या जवाब है? अंगद के पास एक ही जवाब है, क्या? कि समुझ राम प्रताप कपि कोपा। और भगवान का प्रताप को याद किया उसने कि मैं कुछ भी कर रहा हूं भगवान की कृपा से कर रहा हूं, मेरे साथ भगवान की कृपा शक्ति है। तो यदि मेरे चरण को सिरका भी देगा, तारी तारनवर इतना सिरका भी देगा, सीता हम हार गए हैं। रावण ने कहा, अरे मेरी बात करता है तू, मैं सिरकाऊंगा, मेरे यहां बहुत बैठे, जाओ उठाओ इसका पैर, सिरकाओ इसका पैर। हमारे अंगद जी महाराज भी क्या करे, जो आवे पैर पकड़े ऊपर कुणी की यूं लगावे, वो बिचारा दब जाए, जो भी आवे उसको कुणी से दबाए, लो उठाओ। अब वो अपना बचाव करे कि पैर हटाए, वो चले गए। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्षी उठे जहते हैं भट नाना, खूब हंसी हंसी से तो उठे, और झपटई करी बल बहुल उपाई, पदन टरई बैठे सिरु नहाई। नीचा मुख करके उधर सिरक जाते थे। देखो, एक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनका पैर उठा नहीं, सिरका नहीं, कैसे? जैसे जो आदमी साधन भजन में सत्संग में नहीं लगा है, उसके हृदय में जो मोह का वृक्ष रहता है, वो मोह का वृक्ष जैसे जरा सा भी टस से मस नहीं होता, ऐसे अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। जो लोग साधन भजन करते हैं उनको तो फिर भी लगता है कि अरे ये मोह अच्छा नहीं है, लेकिन जो साधन भजन नहीं करते हैं वो कभी सुन भी लेना कि मोह बिना काम चला है कोई रो, मोह नहीं वे तो बेटा रो पालन माँ क्या करी, मोह नहीं वे तो बाप बेटा ने क्या पढ़ाई, मोह नहीं वे तो घर रो काम क्या चाली, मोह है जरा ठीक है, मोह ने मोह नहीं हटा दे देना फिर कहीं हो। और कोई स्त्री का, किसी स्त्री का पति मर जाए और वो स्त्री भी विवेक से काम लेती हो, रोती नहीं हो, तो भी लोग क्या देखो आ कैसी लुगाई है, ये रो धनी मरियो रो, कोई मोई को नहीं, रोई को नहीं आता, आ तो रोई को नहीं, क्या सत्संग नहीं करते। पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। मोह का वृक्ष है वो उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने साधन भजन नहीं किया, उसका मोह एकदम पक्का रहता है। इसी प्रकार से मेघनाद के समान करोड़ों करोड़ों योद्धा आ गए, उसका पैर टस से मस नहीं हुआ। एक उदाहरण और देते हैं। कोटि विघ्नते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। जैसे संत के सामने करोड़ों विघ्न आ जाए तो भी नीति का त्याग नहीं करता, धर्म का त्याग नहीं करता, कि भाई धर्म तो यही बोलता उसे टस से मस नहीं होते, ऐसे अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। सब लोग मन में टूट गए। बाली कुमार अंगद ने कहा, रावण मैंने तुम्हारे लिए कहा था, तुमने बिचारे इनको भेज करके अपनी बारी को तुमने क्यों नहीं लिया है, ललकार करके कहने लगा। अब रावण उठकर के जो ही बाली के यूं चरण में के लिए नीचे झुकने लगा, तो बाली ने कहा, अरे रे बस बस, मुझे तो यही करना था, तुझे चरणों में गिराना था, बस इतना ही है, मेरे चरणों की बजाय इसी मुद्रा से तुम राम जी के चरणों में जाकर के गिरो, मैं इसीलिए मैंने ये बात की। जाओ गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अब आप लोग कह दोगे कि भाई राव ये अंगद ने ऐसा क्यों कहा, पहले तो पैर रोपा, इसको भी पैर से उठा देने का मौका। अरे वो बात कर रहा है, रिपुसन करई बतक ही सोई, वो बात कर रहा है अंगद। बात वो कैसे भी कर सकता है, यहां प्रतिज्ञा थोड़ी ही करनी थी, बात करनी थी उसको, बात किया है। देखो मेरा ये पैर है, उठाने लगा कि भाई राम जी की शरण में जा, तो उसके बाद भी उसको तो उठाना चाहिए था कि राम जी की शरण देखी जाएगी। तूने सभा में मुझे ललकारा है, मैं तेरा पैर उठाऊंगा और सीता को लूंगा और सीता को हराऊंगा। रावण की इतनी बुद्धि आई नहीं, रावण को सोचना चाहिए था ये तो कि भाई तूने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार मैं तुम्हारे पैर को उठाऊंगा, राम जी की शरण में क्यों जाऊं, राम जी मेरी शरण में आएगा। फिर वो उठाता, फिर देखी जाती बात, वो रावण की इतनी बात पैदा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, जो भगवान से विमुख होता है उसके अंदर ऐसी बात पैदा हो ही नहीं सकती है। भयउ तेज हत अश्ली सब गई, उसकी बुद्धि उसका तेज सब खत्म हो गया, उसके मन में बात आई नहीं। नहीं तो कहता शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तूने भरी सभा में पैर उठाने के लिए कहा, मैं पैर उठाऊंगा, सीता को मैं लूंगा, हार गए तो हार गए, जाओ अपने राम को मुंह दिखाओ, करो बात तुम वहां। लेकिन इतनी बात आई नहीं, क्या करें। सुनत फिरा मन अति सकुचाई, गभयऊ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सो है। दोपहर में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है ऐसी शोभा, शुक्ल पक्ष में अभी जो है दोपहर में ये उग जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का कोई प्रकाश महत्व नहीं है, ऐसे रावण का कोई महत्व नहीं है। वो जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये पाठ को तुम घबराना नहीं, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, तासु दूतपन किमि तरई। अरे यदि वो रावण उठाता भी तो क्या वो पैर उठ सकता था रावण से, भगवान की कृपा उसमें आ गई थी, उठ ही नहीं सकता था उसका पैर। फिर रावण ने उस फिर हनुमान ने उनको अंगद जी ने उनको बहुत सी बातें सुनाई, और जाते 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 अब अंगद ने कहा देख जा रहा हूं, इतनी सी बात मेरी सुन लेना, मैंने यदि युद्ध के अंदर तुमको एक मदारी के समान माने मदारी जैसे बंदरों को नचाता है ऐसे मैंने यदि तुमको नहीं खिलाया तो मेरा नाम अंगद नहीं है, और अभी से मैं हम कुछ नहीं कहते हैं, अभी बड़ाई करना अच्छा नहीं, युद्ध के अंदर देख लेना हमारा पुरुषार्थ, तुम्हारे बेटे को मारा है जिस हनुमान ने, वो भी उस युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। इतने हम लोग आए, सब कोई बुद्धिहीन नहीं है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है रावण, अब तुझे यदि हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो नहीं सही। इस प्रकार से वहां से अंगद जी छलांग मार करके भगवान के चरणों में आकर प्रणाम कर रहे, भगवान बड़े खुश हो गए। आओ अंगद आओ, समाचार सुनाओ, समाचार तो महाराज अब आज नहीं कल सुनाएंगे।
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय।
सीताराम 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 जय सीताराम
जय 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 सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम
सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय पवन सुत हनुमान की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय जय